भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम् प्रथम स्कंध नवाध्याय श्लोक 46 तस्य निरारणादीनि तस्य निरारणादीनि संपरेतस्य भार्गवा संपरेतस्य भार्गवा युधिष्ठिरकारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवात् तस्य निरारणादीनि संपरेतस्य भार्गवा युधिष्ठिरकारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवात् तस्य निरारणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरकारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवात् तस्य निरारणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरकारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवात् शब्दान्वयः तस्य उसका निरारण आदिनि दाह संस्कार संपरेतस्य मृत देह का भार्गव हे भगवंशी युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर कारयित्वा संपन्न करके मुहूर्तम क्षण भर के लिए दुखी तरह दुखी अभवत हुए ये भृगुवंशी शौनक भीष्मदेव के मृत देह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तात्पर्य भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे अपितु एक महान दार्शनिक और उनके भाइयों एवं माता के लिए मित्र भी थे। क्योंकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर समेत पांच पांडवों के पिता महाराज पांडु मर चुके थे अतः भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्र वधु कुंती देवी के संरक्षक थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख के लिए जीवित थे लेकिन उनका स्नेह सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन आदि अपने सौ पुत्रों के और अधिक था। अंततोगत्वा पांचों पितृविहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के अधिकार से वंचित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। राजमहलों में सामान्य रूप से जैसा होता है कपट चाल चली गई और पांचों भाइयों का वनवास दे दिया गया। लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अपने अंतिम क्षण तक भी शुभ चिंतक पितामह मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठा देकर खुशी खुशी मृत्यु को वरण किए अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों के सहने के बजाय बहुत पहले शरीर त्याग कर चुके होते। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र अवश्य विजय होंगे क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण थे। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान के भक्त को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव की इन सारी शुभेच्छाओं का पता था, अतएव वे अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। वे उस महान आत्मा के विच्छेद से शोकाकुल थे, उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्मदेव ने त्याग दिया। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था। यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे, क्योंकि भीष्मदेव निसंतान थे, अतएव सबसे बड़े पौत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के समुचित अधिकारी थे। यह भीष्मदेव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के समरूप ही एक महान व्यक्ति ने इस महापुरुष के अंतिम संस्कार संपन्न किए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति श्रद्धा स्वामी नामने नमो सद्भक्त मनय मणिपुरोद्भवाय च प्रभुपाद सद्वाणी प्रचार निगताय च। कृष्ण, मैं सबसे पहले उपस्थित हमारा कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में हमारा प्रणति निवेदन करता हूँ। आप सभी भक्तों को और माता जी को चरणों में मेरा प्रणति निवेदन करता हूँ। ये निराचल धाम है, मैं किस निराचल धाम से आया तो हमारा भाषा निराचल है, उड़िया है, तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे क्षमा करेंगे। इस श्लोक के पहले मैं प्रस्तुत नहीं था, तो जो भी आपके कृपा से, गुरुदेव और प्रभुपाद की कृपा से, हम थोड़ा 10-15 मिनट इसके बारे में, इस श्लोक के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो ये जो प्रथम स्कंद 9वां अध्याय है, ये भीष्मदेव के बारे में बताया गया है। आप सब जानते होंगे भीष्मदेव ने एक महाभागवत थे जो है भागवत षष्ठ स्कंद में बताया गया है, जमराज जो भी एक महाभागवत है वो महाजन है। भीष्मदेव भी ऐसे एक महाजन, द्वादश महाजन है, आप सबको पता होगा। ये जमराज ने बताया उनको, दूतों के लिए, दूतों को, क्योंकि उनको दूतों ने, वो ठीक तरह नहीं जानते थे क्या धर्म है। सुधर्मराज जो कि जमराज है वो बताते हैं वो कौन, क्या धर्म है। धर्मंगी धर्म जो है ये है भगवान का बनाया हुआ आयन को धर्म का बताते हैं। धर्म तत्व ही तो गुहाया, धर्म का तत्व कोई नहीं जान सकते हैं। महाजन जनक अथर्ष पंथा, जो महाजन बताते, ये युधिष्ठिर महाराज बताते हैं महाभारत में, धर्म को बताते हैं। ये धर्म का तत्व बहुत गंभीर है, जैसे भीष्मदेव एक महाजन है, क्योंकि ये तत्व जानते हैं, धर्म का तत्व जानते हैं। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम्, धर्म क्या है जो भगवान ने बनाते हैं, ये धर्म है। हमारे प्रभुपाद महाराज बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं, जैसे हमारा भारत में सरकार का नियम है जो राष्ट्र का बाएं में चलना। अगर हम कहेंगे नहीं मैं हमारा एक नया आयन बनाऊंगा, मैं राष्ट्र का दाएं चलूंगा, तो हमको जल जाना पड़ेगा। इस तरह जो भगवान ने बताते हैं ये धर्म है। सो भीष्मदेव ये भी धर्म का ज्ञाता है, वो जानते हैं, जो बताते हैं कौन द्वादश महाजन है, इसमें कौन कौन है, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रह्लाद, जनक, भीष्म, बड़ी व्यास की भयम, ये जमराज बताते हैं। ये द्वादश है कि बीजान, ये द्वादश महाजन है। सो महाजन के धर्म के तत्व को जानना इतना आसान नहीं। जो ये भागवतम है, ये पुराणम अमरम, ये प्रमाण महाप्रभु बताते हैं, ये प्रमाणम अमर प्रमाण है, इसमें धर्म का तत्व बताया गया है। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं, जो भगवान आते हैं तो जदा जदा ही धर्मस्य ग्रहणी भवति भारत, आप जानते होंगे भगवद्गीता चतुर्थाध्याय में बताया गया है, भगवान बताते हैं अर्जुन को, तो उसमें भगवान का आने का कारण बताते हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय, वो धर्म स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं, साधुओं को आनंद देने के लिए, और जो दुष्कृत है चार प्रकार के दुष्कृत के बारे में बताए गए हैं भगवद्गीता में, जैसे मूढ़ा, नराधम, माया, प्रज्ञानम, आसुरम, भावमाशिता, ये चार तरह का दुष्कृतवान पुरुष होते हैं जो भगवान के शरण में नहीं जाते हैं, तो भगवान उनको विनाश करते हैं, विनाश करके भी उनके लिए मंगल करते हैं। भगवान मंगलमय है, भगवान उनको सदगति प्रदान करते हैं। भगवान का एक नाम है अवतारी गतदायका, गतदायका, जो भगवान जिनको हत्या करते हैं उनको अंतिम बहुत सुंदर गति देते हैं। जैसे बकी को भगवान बकी का प्राण ले लिए लेकिन उनको धातृ गति प्रदान किए, अहो बकी जम तनकाल कुटम, ये बताया गया है, उद्धव ने बताते हैं विदुर जी को तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय में। जो बकी है, पुतना है, जो भगवान छः दिन के होते थे, हुए थे उस समय उनको प्राण लेने के लिए आया था, लेकिन भगवान अगर भगवान बकी को प्राण लिए लेकिन उसके साथ उनको अपनी माँ यशोदा को जो गति दिए, अपनी धात्री जो दो धात्री है भगवान के अंबिका और किलिम्बा, उनको जो गति दिए थे उस बकी को भी उतना ऐसे गति दिए। तो कंबा दयालु शरणम ब्रजेम, और कोई दयालु व्यक्ति है, और कोई दयालु है जो जिनके शरण में हम जाएंगे, इसी भगवान है। तो ये भगवान ने जब पांडवों के साथ भगवान ने कितना सारे लीला किए हैं, इस 16 चैप्टर में आएगा। सारथी पार्षद सेवनम सख्य दौत्य विरासनान गमनम स्तवन प्रणानम प्रणामान, ये सब भगवान इस तरह का पांडवों का सेवा करते थे। भगवान सेवा करते हैं, हम भगवान भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं लेकिन भगवान भी भक्तों का सेवा करते हैं। अभी सारथी होते हैं, अर्जुन के सारथी हुए, तो पार्षद होते हैं, मंत्रणा देते हैं, सख्य दौत्य भगवान शांतिदूत के लिए शांतिदूत बनकर आए थे, धृतराष्ट्र बताए, पांच गांव दे दीजिए उसमें पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। पांडव का जो है ये सब समग्र पृथ्वी पांडव का है। इसके बाद वो जो भीष्मदेव के भीष्मदेव देखे किसी युधिष्ठिर महाराज सम्राट बने, राजस्व यज्ञ करते थे, राजस्व यज्ञ जो समग्र पृथ्वी का सम्राट बन सके, इसे राजस्व यज्ञ कौरव नहीं कर सके, पांडव ने किए। अंतिम जो प्रॉब्लम था, अंतिम जो बंधन प्रतिबंधक था वो ये जरासन, जो भगवान ने अर्जुन के साथ और भीम के साथ गए और भीम ने उस जरासन को हत्या किए, उसके बाद पांडव ने ये यज्ञ किए, क्या कहते हैं वो है यज्ञ जो है, क्या यज्ञ बताया, राजस्व यज्ञ किए, बहुत सारे यज्ञ हैं। चलिए ये जो है युधिष्ठिर महाराज कि समग्र पृथ्वी का सम्राट है, तो उनका ये है, उनका शक्ति था, उनका वो योग्यता था, लेकिन कौरव ने चक्रांत बनाकर वो पांडवों से उनका अधिकार छीन लिया था। लेकिन भगवान ने जो अगर शांति होकर गए थे लेकिन भगवान चाहते थे नहीं, ये शांति नहीं स्वीकार किए करे, कौरव ने अगर शांति को स्वीकार करते थे पांडवों को पांच कंडी ग्राम दे देते थे तो ये युद्ध नहीं होता। तो भगवान चाहते नहीं, ये शांति नहीं होना चाहिए, शांति उनके साथ किया जाता है जो शांत है, शांत जो अशांत है उनके साथ कैसे शांति बना जाए। जो कौरव हैं वो सब पापी व्यक्ति थे, वो धर्म के नीति नहीं मानते थे, धर्म की नीति उल्लंघन करते थे, अधर्म में थे। तो भगवान चाहते धर्मराज है युधिष्ठिर महाराज, जो धर्मराज है, इसी भी नैतिक दृष्टि से विचार किया जाए तो युधिष्ठिर महाराज को वो राज्य मिलना चाहिए था क्योंकि वो बड़ा थे। इसलिए जब ये गांधारी ने सुना कि कुंती ने पहले जन्म दे दिया युधिष्ठिर महाराज को, उनका नाम तो बाद में होगा, तो कुंती दे गांधारी ने बहुत विद्वेष बन गया, उनका विद्वेष हो गया, तो उन्होंने उनके पेट को ऐसे ताड़न दिया, तो इसलिए जो पुत्र थे वो 100 भाग हो गए, ये प्रभुपाद ने बताते थे। तो ऐसे दुर्योधन को ये राज्य का योग्यता नहीं था, राज्य शासन करने का योग्यता नहीं था, फिर भी उन्होंने चक्रांत करके पांडवों से छीन लिया था। लेकिन भगवान जब गए शांतिदूत बनकर, तो उन्होंने एक क्या पांच गांव गया, एक सूची के में जैसे भूमि है, इसी भूमि को देने के लिए तैयार नहीं था। तो भगवान की इच्छा थे, वो युद्ध हुआ, युद्ध में पांडव ने जीता। तो युधिष्ठिर महाराज किसे धर्मराज थे, देखिए युद्ध को जीता पांडव ने, कौरव ने कितने सारे उनके लिए उनका उनके ऊपर अपराध किए थे, अत्याचार किए थे, फिर भी युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं अजात शत्रु, ये जो भक्त है, भक्त का ये योग्यता है, भक्त का ये क्वालिफिकेशन है, ये अजात शत्रु है। तृतीय स्कंद में भागवत ने बताते हैं दैट तिथिक्षव कारुणिक श्रुदंग सर्वभूताना अजात शत्रु शांता साधव साधुभूषण, ये साधु का गौण लक्षण है, मुख्य लक्षण है भगवान के शरण ये है, ये मुख्य लक्षण है। गौण लक्षण जो है वो सब सहन करते हैं, तिथिक्षव जैसे युधिष्ठिर महाराज सब सहन करते थे, कौरव ने कितने सारे द्रोह किए उनके विरुद्ध, फिर भी उन्होंने उसको सहन किए, और सिर्फ सहन नहीं किए, उनका कारुणिक है, उनका कैसे मंगल होगा वो ऐसे चिंतन करते थे। युधिष्ठिर महाराज कौरवों को अपने शत्रु नहीं मानते थे, भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कौन हमारा शत्रु है, काम ऐस हृदय ऐसे रजोगुण संभव महासन महापापमा विधि एनम ये बैरिणम, ये हमारा शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह ये हमारा प्रकृत शत्रु है, और कोई हमारा अपने कोई शत्रु नहीं है। तो ये युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु, ये भक्त का नाम भी अजात शत्रु है, कोई उनके द्रोह करते हैं फिर भी उनका कैसे मंगल होगा, कैसे ये उनका उपकार होगा, वो ऐसे चिंतन करते हैं। जैसे हमारा नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उनके उनको 22 बाजार में बेत्राघात किया गया, फिर भी वो भगवान को प्रार्थना करते हैं प्रभु इनको क्षमा कर दीजिए, इसे हरिदास ठाकुर ने भगवान पे प्रार्थना करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज तो आखिर जो हुआ फाइनल हुआ, आखिर में क्या हुआ, युद्ध में जीत गए, तो उनको राजा बनना था, फिर भी उनका शोक हुआ। भगवान ने जितने भी बताए हैं, जितने भी ज्ञान दिए, भगवान को ज्ञान पाकर अर्जुन का बहुत दूर हो गया। अंतिम में अर्जुन बताते हैं अपने भगवद्गीता अष्टादश अध्याय में पढ़ेंगे, अर्जुन कहते हैं प्रभु हमारा मोह दूर हो गया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत् प्रसादात में आती, तो मेरा मोह दूर हो गया। लेकिन ये जो भगवान ने भगवद्गीता बताते हैं वो कैसे बताते हैं, अर्जुन को बताते हैं महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में बताते हैं, एक साइड में कौरव के 11 अक्षौणी सैन्य है, और एक साइड में पांडवों का 7 अक्षौणी सैन्य है। एक अक्षौणी सैन्य का मतलब 2,18,700 ये एक अक्षौणी सैन्य, तो इतने 11 अक्षौणी सैन्य थे कौरव के पक्ष में और 7 अक्षौणी सैन्य थे पांडवों के पक्ष में। तो भगवान ने बीच में ये भगवद्गीता बताए हैं, भगवान बीच में कौन जो है पांडवों के कौरवों के पक्ष में जो है भीष्म द्रोण प्रमुख था सर्व महारथा उवाच पात्र सेतान, बीच में भगवान बताते हैं भगवद्गीता। तो भगवद्गीता को सभी सुने हैं, हमारा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये टीका में बोलते हैं क्यों भगवान भगवद्गीता को बीच में बताए, क्योंकि सब सुनेंगे, ये सब साक्षी तत्व, ये सब साक्षी है, ये भगवद्गीता कोई लुटा छपा काम नहीं, गुप्त में क्या बताया गया नहीं, ये सबके सामने बताया गया है। तो युधिष्ठिर महाराज भी सुने थे भगवद्गीता, धृतराष्ट्र भी सुने, संजय उनको बताए, वो कुरुक्षेत्र में नहीं थे, वो हस्तिनापुर में थे, 150 माइल दूर में थे, क्योंकि संजय का जो ये था चक्षु था, दिव्य चक्षु था, उन्होंने देखा और सुना भी, तो उन्होंने धृतराष्ट्र को बताए, युद्ध के बारे में बताए। लेकिन जो अर्जुन का जो मोह था वो दूर हो गया, वो बताते हैं नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन भगवद गीता सुनकर उनका मोह दूर हो गया तो उन्होंने युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन युद्ध के जीतने बाद भी, जीतने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज वो शोकाकुल होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये सब जो हुआ, इतने अखुनी सैन्य मृत्युवरण किए, उनका जो स्त्री थे, उनका जो पत्नी थे, वो सब विधवा हो गए, तो उनका बच्चे सब अनाथ हो गए, इस तरह ये अपने को दाई मानते थे, मेरे लिए सब हुआ, मैं ही दाई हूँ। इसलिए भगवान ने जितना भी बुझाए, जितना भी समझाए, फिर भी उन्होंने समझे नहीं कि भगवान ने भीष्मदेव को क्रेडिट देने के लिए, भीष्मदेव को दशा देने के लिए ऐसे युधिष्ठिर महाराज को समाधान समझाने नहीं दिए। तो आखिर में युधिष्ठिर महाराज, भगवान और सब मुनि ऋषि जाकर भीष्मदेव के पास गए और भीष्मदेव सरसज्जा में होकर भी वो ज्ञान दिए। ये महाभारत में अनुशासन पर्व में, शांति पर्व में इसे बताया गया है, जो युधिष्ठिर महाराज को कैसे राजधर्म, स्त्री धर्म, ये सब भागवत धर्म, ये सब धर्म बताए। युधिष्ठिर महाराज का शोक भी दूर हो गया भीष्मदेव से सुनकर, भीष्मदेव से सुनकर ज्ञान प्राप्त होकर युधिष्ठिर महाराज के शोक दूर हो गया। लेकिन आखिर जो भीष्मदेव जब शरीर छोड़ दिए, तरह निराहण जो 46 में बताया गया है, तस्य निराहरणाधिनी, तो जो संस्कार सब होते हैं, जैसे दाह संस्कार होते हैं, ये सब के बाद जो, क्योंकि भीष्मदेव उनका निसंतान थे, भीष्मदेव ने इनका नाम भीष्म क्यों हुआ, उनका नाम देवव्रत था, लेकिन उन्होंने शपथ लिया वो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पिता जो है शांतनु है, उनका जो इच्छा था, इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया। शांतनु चाहते थे, उनका जो पहला पत्नी था गंगा देवी, गंगा देवी का पुत्र थे भीष्मदेव। तो ये बहुत बड़ा कथा है, लेकिन आप सबको मालूम होगा। तो ये इसे बाद में जब गंगा देवी चले गए, तो शांतनु ने सत्यवती को विवाह करने के लिए चाहा था, लेकिन सत्यवती का पिता वो कंडीशन रखा, ये मेरा जो कन्या है उनका जो संतान होगा ये राजा होगा, इसी कंडीशन में अगर आप राजी होंगे तो मैं अपना कन्या को प्रदान करूंगा। लेकिन शांतनु नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका बड़ा बेटा है भीष्मदेव है, तो वो भीष्मदेव का वो राजा बनना चाहे था, लेकिन वो नहीं, इसलिए वो कंडीशन में नहीं आग्री हुए भीष्मदेव ने, ये जो शांतनु ने। तो बाद में जो जैसे पता चला देवव्रत को, ये हमारे पिता चाहते हैं सत्यवती के साथ विवाह करने के लिए, तो उन्होंने उनके पिता का जाकर ये कंडीशन दिए, राजी हुए। ये कहे नहीं मैं राजा नहीं हूँगा, जो संतान होंगे सत्यवती का जो संतान होगा वो राजा होगा। तो सत्यवती के पिता बोलते हैं नहीं नहीं तुम नहीं मानते हो तो ठीक है, तुम नहीं राजा होगे तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो बेटा होगा वो तो राजा होगा ना, तो इसलिए उन्होंने शपथ लिया नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, विवाह नहीं करूँगा। तो उनका नाम भीष्म हुआ, भीष्मदेव उनका कोई संतान नहीं थे, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज वो उनका कौन पौत्र है, उनका पांडु का पुत्र है। तो ऐसे तो युधिष्ठिर महाराज ने ये निराहरण दिन जो है संप्रतम का कार्य जो है संप्रतस्य भार्गव, संप्रतस्य जो संस्कार आदि सब हुआ उनके किए युधिष्ठिर महाराज। तो ये सुत गोस्वामी बताते हैं सोनगादि ऋषि को, 88,000 ऋषि थे वहाँ नैमिषारण्य में, सो भार्गव भृगु का पुत्र थे सोनक, तो इसलिए भार्गव उनको संबोधन किए। तस् निर्णाधिनी संप्रतस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर तो ये युधिष्ठिर जो है धर्मराज है, वो संपादन किए। तो मुहूर्तम दुखितो अभवत, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज वो जानते हैं, वो धर्म का तत्व जानते हैं, वो धर्म के धर्मराज के पुत्र है युधिष्ठिर महाराज। वो जैसे भगवदगीता में भगवान बताते हैं, अशोच्यान अनुशोचस्तन प्रज्ञावादान सभास से कथासन अगतासन सन अनुशोच पंडित, जो शरीर के बारे में जो पंडित लोग होते हैं वो सोचना नहीं करते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का सोचना है, क्योंकि भीष्मदेव ये आत्मा के बारे में सोचते हैं। भीष्मदेव ने महाजन थे, जैसे महाप्रभु ने बताते हैं, जैसे हरिदास के निर्याण में समय चेतन चर्ता में बताया गया है, कृष्ण करी कृपा करी कृष्ण मरे दिया छलान संग, स्वतंत्र कृष्ण इच्छा कैला संग भंग। जैसे हरिदास ठाकुर का निर्याण निर्जन हुआ तो इस समय महाप्रभु ने ये पैर बोले हैं, कृपा करी कृष्ण मरे, वही वही कृष्ण है, वही स्वयं कृष्ण है। तो कहते हैं भगवान ने कृपा करके हमको तुम्हारा संग दिए थे, हरिदास का संग दिए थे, लेकिन ये भगवान का इच्छा है वो ले गए। तो इसे जो महान लोग होते हैं उनको वियोग में ये शोक, ये शोक का प्रकृति शोक का ठीक है, शोक करना अच्छा है। जो महान भक्त का जो चले जाने से ये शोक शोक शोक्य है, हमको शोक करना चाहिए। तो ये बताया गया है जैसे जो महान व्यक्ति चले जाते हैं, जैसे हमारा प्रभुपाद महाराज और किसी किसके गुरुदेव, हमारा जो भक्ति सिद्धांत, हमारा जो है गौरगुंद स्वामी महाराज, भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज, ये सब हमारे चले गए, लेकिन वो जाने पर भी वो विद्यमान है। किसे विद्यमान है? वाणी के रूप में विद्यमान है। हम बापू के संग नहीं कर सके, लेकिन वाणी के माध्यम में हम उनका संग कर सकते हैं। जैसे हम अभी प्रभुपाद का संग करते हैं वाणी के माध्यम में। तो ऐसे ये स्कंद जो है ये 10,000 तक वर्ष तक चलेगा, 10,000 साल तक चलेगा। तो मैं मेरा कथा को यहाँ विश्राम दूंगा। तो अगर कुछ नहीं समझा सके तो कुछ आप प्रश्न कर सकते हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं समझ पाए या नहीं,
जय श्रीमद् भागवतम की, जय श्री प्रभुपाद महाराज की, जय श्री गुरुदेव की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हृदय गौर परमानंदे।